नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण पर केंद्रित कार्यक्रम सीप के मोती। हमारे जीवन का आधार हैं विचार, संस्कार, जीवन शैली और कार्य व्यवहार। इन चारों तत्वों के परिष्कार का प्रयास है हमारा कार्यक्रम सीप के मोती। प्रस्तुत है सर्वांगीण विकास और चरित्र निर्माण पर केंद्रित इस कार्यक्रम का आज का अंक। श्रोताओं, हमारे आसपास चलते फिरते ये जो लोग हैं, ये लोग नहीं कहानियां हैं। जितने लोग, जितने जीवन, उनकी उतनी ही अलग कहानी। और जीवन की इस कहानी को लिखते हैं हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी परिस्थितियां और हमारे प्रयास। हर व्यक्ति को ईश्वर ने एक दिन में 24 घंटे का ही समय दिया है। इन्हीं 24 घंटों में हमारे प्रयास होते हैं, हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और इसी का परिणाम होता है हमारा जीवन। विचार, संस्कार, परिस्थितियां और प्रयास, इन्हीं से मिलकर हर जीवन की कहानी बनती है। जो लोग इनके साथ सकारात्मक दिशा में चलते हैं, उनका जीवन यादगार हो जाता है, उपलब्धियों से भरा एक ऐसा जीवन जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती हैं। अनगिनत लोग एक साधारण सा जीवन जीकर इस संसार से विदा ले लेते हैं, लेकिन अपने जीवन को स्वयं संघर्ष कर गढ़ने का जो काम करते हैं, वो लोग यादगार हो जाते हैं। एक ऐसा ही जीवन रहा है सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, विधिवेत्ता, समाज सुधारक, साहित्यकार और महादानी डॉक्टर हरि सिंह गौर का। आज उनके प्रेरक व्यक्तित्व पर हम चर्चा करेंगे और ये एक सुखद संयोग है कि इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं उन्हीं द्वारा स्थापित डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में पदस्थ इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। ब्रजेश जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
नमस्कार सुनीता जी।
आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर के प्रेरक व्यक्तित्व पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके विषय में हमारे श्रोताओं को आप बताएं।
सुनीता जी, जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर एक प्रख्यात विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, साहित्यकार, दार्शनिक, समाज सुधारक एवं महादानी थे। ये साथ इतने गुणों का होना हमें यह बताता है कि सुनिश्चित रूप से वो किस प्रकार और कितने महान रहे होंगे। और यही कारण है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके बारे में कहा था, उनके महादानी होने के गुण का पता उस समय लगा जबकि उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का सदुपयोग कर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी तारतम्य में मगन भाई देसाई का कहना था कि वह दो विश्वविद्यालयों के जन्मदाता थे, एक दिल्ली विश्वविद्यालय और दूसरा सागर विश्वविद्यालय।
अच्छा।
और भाइयों, कबीर ने भी उनके बारे में कहा है, डॉक्टर गौर प्रख्यात विद्वान ही नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जिसके पास गजब की दूरदृष्टि एवं साहस था। और हमारे दार्शनिक एवं द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि यदि हम उन महान आदर्शों को जिन्हें डॉक्टर गौर ने अपनी जिंदगी में जिया है, अगर अपने रोजमर्रा के जीवन में व आचार विचार में अपना लें, तो यह देश जैसा हम सोचते हैं उससे भी कहीं बेहतर बन जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हरि सिंह गौर कितना महान व्यक्ति।
तो एक उनके महान व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व पर आपने चर्चा की और वास्तव में एक यादगार व्यक्तित्व है उनका और उसके कई आयाम हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम उनके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसा बचपन था उनका।
सुनीता जी, उनका जन्म 26 नवंबर 1870 को सागर में हुआ था। उनके पिता का नाम तख्त सिंह और माता का नाम लाडली बाई था। उनके तीन भाई थे, यानी कुल मिला के 4 भाई थे, जिसमें सबसे बड़े ओंकार सिंह, फिर आधार सिंह, फिर गणपत सिंह और चौथे नंबर के हरि सिंह। और उनकी दो बहनें थी, लीलावती एवं मोहन बाई। उनके जो पिता तख्त सिंह थे वो चीफ कांस्टेबल थे, लेकिन जब उनके बड़े पुत्र आधार सिंह की नौकरी लग गई और वो प्रतिमाह 50 रुपए भेजने लगे तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उन्होंने अपने पुत्र के पैसों पर गुजर करना आसान समझा। लेकिन उनकी माँ थी वो बड़ी कर्मठ महिला थी, और चूंकि पहले आधार सिंह उनको 50 रुपए भेजते थे, फिर बाद में उन्होंने कम करके 30 रुपए प्रतिमाह कर दिए, बाद में 10 रुपए प्रतिमाह कर दिए, तो इससे स्थिति आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी। तो उनकी जो माँ थी वो एक चरखा ले आई और डेली चरखा पर सूत काटती और उसको बेचती थी, उससे
अच्छा
जीवन यापन उनका चलता था। और बालक हरीसिंह गौर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत चाहते थे, उनका अपनी माँ के प्रति अत्यधिक स्नेह था। और उसी समय जब कक्षा 2 में पढ़ रहे थे तो उनको पढ़ाई से प्रभावित तो होकर उनको मिशेल स्कॉलरशिप मिली 2 रुपए प्रतिमाह। अपनी माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ अब आज के बाद आप चरखा चलाना बंद कर दो, क्योंकि मुझे वजीफा मिला, तो उसका टाल दिया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने एक छोटा सा बगीचा बनाया। उनकी विज्ञान में विशेष रुचि थी, एक उन्होंने जल घड़ी बनाई, और
अच्छा
उनके जो भाई के पास एक इंग्लिश लीवर कंपनी की घड़ी थी, और जल घड़ी का टाइम उस घड़ी से एक्यूरेट मिलता था। और कालांतर में उन्होंने फाउंटेन पेन भी बनाया, शेविंग रेजर भी बनाया, और अपने आप खुले को भी बनाया। तो इससे पता चलता है कि वो कितने होनहार थे।
तो बचपन से ही उनकी जो प्रतिभा थी वो नजर आने लग गई थी, और जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक महान शिक्षाविद थे, और कितने आयाम उनके व्यक्तित्व के नजर आते हैं, तो सहज ही जिज्ञासा होती है कि उनकी शिक्षा के बारे में हम पूछें, वो किस तरह से हुई।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वो छोटे थे, प्राथमिक में ही थे, एक दो क्लास में थे, उसी समय उनके पिता एक बार अपने उनके शिक्षक मदनलाल श्रीवास्तव जी से मिलने गए और उनसे पूछा मेरा बेटा कैसा पढ़ने में। मदनलाल जी ने कहा कि यह लड़का तो तिलगा है जो आने वाले समय में खूब चमकेगा। पिता ने जब यह बात हरिसिंह गौर को बताई तो उन्होंने अच्छे साहब ने अपने दोस्तों को बता दी, और दोस्त उनको रोज तिलगा तिलगा कहकर चिढ़ाने लगे।
जी
तो उन्होंने ठान लिया कि अब मैं तिलगा बनकर ही दिखाऊंगा, और उन्होंने 4 वर्ष की परीक्षाएं मात्र 2 वर्ष में पास कर ली।
अच्छा
और जब हाई स्कूल उनको करना था तो चूंकि हाई स्कूल की सुविधा नहीं थी और हाई स्कूल के लिए हरे बच्चों को जबलपुर जाना होता था, तो 1870 ईस्वी में मात्र 12 वर्ष की आयु में वो जबलपुर गए। और जब जबलपुर गए तो उनकी जो बहन थी मोहन, वो उनको बहुत चाहती थी, और भाई बहन के प्रति अत्यधिक उत्साह था, तो उनकी आंखों में बहुत आंसू थे। बहन भी रो रही थी, ये भी रो रही थी। बैलगाड़ी पर चढ़ती गए, बहन देखती रही, और संभवतः उसी समय उनके मन में यह ख्याल आया कि मैं तो अपने परिवार को छोड़कर पढ़ने के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि भविष्य में कोई सागर से उच्च शिक्षा के लिए बाहर ना जाएगा। और उसके बाद वो जबलपुर जाते हैं। अच्छा, उनके पिता के पास एक अंगूठी थी सोने की, उनको बड़ी पसंद, तो उन्होंने अपने वजीफा से सेम वैसी की वैसी अंगूठी बनवा ली। और जब जबलपुर हाईस्कूल में पढ़ रहे थे तो एक उनके सहपाठी था, उसने उसकी नजर अंगूठी पे थी, तो उसने उनसे कहा कि तुम अकेले रहते हो और परेशान होते हो, खाना अपना बनाते हो, मेरे साथ रहो, मेरी माँ है, बहुत अच्छी है मेरी माँ। तो वो उनको हरिसिंह गौर को भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो उनकी अच्छी थी नहीं, उनके पास चले गए, और 2-4 दिन बाद ही उन्होंने उनकी अंगूठी चुरा ली। तो हरिसिंह गौर को बड़ा बेकार लगा और वो समझ गए पूरा। उसके बाद उन्होंने वहीं पर उनके परिचित थे गजाधर शुक्ला जी, उनसे मिले। गजाधर शुक्ला जी ने उनका ICS AC-10 स्टाफ से मुलाकात कराई, और अंततः ये जो चोरी थी उसका पता लगाया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में वो फेल हो गए और उनको वापस सागर आना, मतलब उन्होंने नौकरी करने का प्रयास किया, लेकिन उनका ये क्योंकि वो हाईस्कूल में फेल थे और दूसरे जो पास थे उनको सैलरी ज्यादा मिल रही थी, इनको फेल होने के कम मिल रही थी, तो ये भेदभाव उनको। उसी समय इनके जो बड़े भाई थे आधार सिंह, वो नागपुर में थे, उन्होंने कहा कि आप नागपुर आ जाइए पढ़ने के लिए नागपुर। और सुनीता जी, नागपुर में आपको बता दें कि इनके सितारे हमेशा बुलंदी पर रहे। नागपुर में एकदम परिवर्तन हुआ और वहां उन्होंने हाई स्कूल प्रथम श्रेणी मेरिट में पास की,
अच्छा
कविता सूचनी में भी स्थान पाया, इसलिए 30 रुपए नकद इनाम मिला। और फिर बाद में इंस्टीट्यूट जो कि बाद में स्लब कॉलेज बना, उसमें एडमिशन लिया, और यहाँ भी उन्होंने जो गणित की परीक्षा थी उसमें अधिकतम अंक लाने के लिए 50 रुपये का पुरस्कार पाया, और भाषा में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए 50 रुपये का पुरस्कार पाया। यहाँ पर प्रोफेसर ब्रेमनर उनको पढ़ाते थे, उनसे भी अति प्रभावित थे, और ब्रेमनर के सहयोग से ही उनको विदेश जाने का मौका मिल गया, क्योंकि वो अपने भाई की तरह विदेश जाना चाहते थे, क्योंकि तो उनके भाई भी विदेश जा चुके थे। और जब वो विदेश जा रहे थे तो उनके भाई आधार सिंह ने अपने बेटे मुरली मनोहर को भी उनके साथ भेज दिया, और इस प्रकार उनकी विदेश जाने की इच्छा पूर्ण हुई। 1889 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डाउनिंग स्ट्रीट कॉलेज में उन्होंने प्रवेश ले लिया।
अच्छा।
यहाँ पर उनको दर्शन हेनरी सिजविक जैसे प्रख्यात दार्शनिक ने पढ़ाया, अर्थशास्त्र अल्फ्रेड मार्शल और जेम्स कीन्स जैसे प्रख्यात अर्थशास्त्रियों ने पढ़ाया, और इतिहास सर जान चीले जैसे प्रख्यात इतिहासकारों ने पढ़ाया। यहाँ पर उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि गणित के एक परीक्षा होती थी, उसमें जो प्रथम आता था उसको 50 पॉइंट का पुरस्कार मिलता था। तो हरिशन गौर तो कुशल थे, मेधावी थे, उन्होंने ये परीक्षा दी, लेकिन चूंकि हरिशन गौर प्रथम आए थे तो उस वर्ष वो पुरस्कार किसी को दिया ही नहीं गया।
अच्छा
जी। और उसके बाद कहते हैं ना कि हुनर तो आपका जो है, हीरा तो अपनी चमक बिखेरता ही है, उसको आप तब तक उसी समय
नहीं छुपाया जा सकता जी।
चांसलर स्वर्ण पदक मिलता था सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए, एक कविता का कॉम्पिटिशन हुआ और इन्होंने उसमें कविता प्रस्तुत की, और इसके लिए उनको चांसलर का स्वर्ण पदक मिला। और होनहार तो थे ये, महावीर भी 3 वर्ष के लिए गए थे, 3 वर्ष की जो पढ़ाई थी उन्होंने 2 वर्ष में ही पास कर ली, डिग्री उन्हें मात्र 2 वर्ष में मिल गई, और जो 1 वर्ष उनके बचा उसमें उन्होंने 1989 में लॉ ऑब्टेन कर लिया, तो लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली।
अच्छा।
लेकिन सुनीता जी, यहाँ पर जो समस्या हुई वो क्या हुई कि उनका जो भतीजा था मुरली मनोहर, उसका नंबर कम होने का अच्छा एडमिशन भी नहीं हो पाया, वो पढ़ने में उसकी रुचि भी नहीं थी, और इनका निरंतर नाम हो रहा था, प्रभाव बढ़ रहा था, तो वो इसकी चुगली अपनी माँ से करता था। धीरे धीरे उनकी माँ ने अपने पति से कहा कि देखिए तुमने अपने छोटे भाई के साथ बेटे को भेजा, लेकिन बेटे के साथ भेदभाव कर रहा है और अच्छा उनका व्यवहार नहीं है, तो आधार सिंह ने पैसा भी भेजना कम कर दिया। उसके बाद अब उनको आने की स्थिति इतनी नाजुक थी, आए तो आए कैसे, तो बड़ा जो भी कुछ उनको प्राइज मिली थी या जो कुछ भी मिला था, उस समय पेपर में भी न्यूज देते थे, कई रॉयल्टी वगैरह मिली कुछ भी, तो वो सब खर्च करके और उन्होंने टिकट की व्यवस्था की। लेकिन जो दलाल था वो, उसने कहा मैं 11 बजे आपको टिकट लाके दे दूंगा, पैसे ले लिए, लेकिन 11 बजे वो आए तो पैसा भी चला गया। तो बड़ी मुश्किल से वो आए जैसे तैसे बॉम्बे, और बॉम्बे से अपने भाई के पास भंडारा गए, और वहां पर अपने भतीजे को छोड़ा, लेकिन भाई का जो रुख था वो बेरुखी का लगा, तो उन्होंने वहां रहना उचित नहीं समझा, और उसके बाद जबलपुर आकर वो अपनी नौकरी के उसमें पड़ गए, किस प्रकार नौकरी मिले, किस प्रकार उन्होंने शिक्षा में मेधावी थे और शिक्षा में वजीफा स्कॉलरशिप प्राप्त करके वो कैम्ब्रिज तक पहुंच गए, तो ये उनका शिक्षा का पूरा लिखा।
फिर सरकारी नौकरी की?
हाँ जी, जैसा कि हमने बताया कि वो मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर एंटोनी मैकडोनाल्ड से मिले, उनके जो शिक्षक थे टेले थे, फेडरिक थे, तो उन लोगों ने प्रस्तुति पत्र दिया था, और उसको दिखाकर एंटोनी मैकडोनाल्ड काफी प्रभावित हुए, उन्होंने उनको भंडारा में ईएसी बना दिया, तो ईएसी की नौकरी उनको मिल गई। 28 अक्टूबर 1892 को भंडारा पहुंच गए वो महाराष्ट्र में। लेकिन उनका जो ज्ञान था, उनके कानूनी ज्ञान की चर्चा काफी फैलने लगी, लेकिन अब इनके साथ समस्या ये थी कि जो सैलरी थी वो इतनी कम थी और इनके पास कर्ज बहुत था, इनको बहुत सा कर्ज चुकाना था, समझ में नहीं आता था करें तो करें क्या, काम भी बहुत ज्यादा था। उसी समय एक कैदी था माधव बंजारा, उसको पता चला कि हरिसिंह गौर काफी अच्छे वकील हैं, काफी कुछ उनको नॉलेज है, ज्ञान है, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि आप जाइए और उनसे मिलिए, तो उनकी माँ गई और 2000 कलदार से भरा एक बोरा उनके पास रख दिया कि ये आपको हम दे रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कि आप कैसे भी करके हमारे बेटे का मुकदमा लड़ लें, और आप हारे या नहीं जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जीत गए तो हम 2000 कलदार को और देंगे। अब ये इतना बड़ा ऑफर था कि इसमें उनकी पूरी आर्थिक तंगी ठीक हो सकती,
दूर हो सकती थी जी।
अभी सोच समझने के बाद उन्होंने 26 जनवरी 1893 को नौकरी छोड़ दी और वकालत आरंभ की। तो इस प्रकार वो,
मतलब वो भंडारा में उनकी जो पोस्टिंग थी वो नौकरी कर रहे थे, और फिर वो वकालत की तरफ उन्होंने रुख किया अपना, और एक बहुत प्रख्यात वकील वो हुए। तो एक वकील के रूप में उनकी जो भूमिका थी वो किस तरह की थी, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से आप बताएं।
ये उनके जीवन का जो कहते ना, हर व्यक्ति के जीवन में एक सर्वोच्च क्षण आता है, और आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि वो वकील बनने के लिए ही पैदा हुए थे।
अच्छा।
और यही कारण है कि उसके बाद वो माधव बंजारा का तो केस जीते तो जीते ही, और उसके बाद जितने भी केस आते थे हर एक केस में जीतने लगे, और फिर स्थिति यह हो गई कि पूरे भारत में उनको लोग बुलाने लगे कोई भी केस के लिए, जहां कोई टिपिकल केस होता था उनको लेते थे, और उनके सामने अच्छे से अच्छा वकील यह सोचता था कि इनके साथ हमारा सामना ना हो। और एक बार बर्मा की एक फर्म थी, वो काफी परेशानी में थी, उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आप हरिसिंह गौर से मिलिए भारत में, तो उनको बुलाया गया और वहां पर उन्होंने उस फर्म को केस जिता दिया, और उनको बर्मा में प्रतिदिन के 3000 रुपए मिलते थे, जबकि भारत में प्रतिदिन 3000 रुपए मिल रहे थे। लेकिन इसके बाद भी उनको बर्मा में रहना रास नहीं आया और वापस नागपुर आ गए और वहीं पर उन्होंने अपना बकरा शुरू की। और इसी बीच में उन्होंने यूं तो कई पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया लॉ की, लेकिन दो पुस्तकें बड़ी प्रख्यात हुई, एक तो संपत्ति का हस्तांतरण जो कि राष्ट्रीय स्तर पर उसको काफी फेम मिली, और दूसरी थी पीनल लॉ द हिंदू कोड, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली और इससे उनको रॉयल्टी मिली। तो इस प्रकार इस प्रोफेशन में, वकालत के प्रोफेशन में उनको दो लाभ हुए, एक तो सारे भारत में उनकी वकालत का योग्यता का डंका गूंजने लगा और कोई भी वकील उनके सामने आने से डरने लगा, और दूसरा इनके पैसे की कोई कमी अब इनके पास नहीं थी।
तो एक बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन था, सागर से निकल कर वो कैम्ब्रिज तक पहुंचे, पढ़ाई की, फिर सरकारी नौकरी, उसके बाद फिर वकालत की तरफ रुख किया और अब एक सुखद जीवन उनका हुआ। अच्छा, महिलाओं की स्थिति के सुधार की दिशा में भी उन्होंने बहुत सा काम किया है, उसके विषय में भी हम जानना चाहेंगे। ब्रजेश जी,
आपको बता दें कि ये अपनी माँ को बहुत चाहते थे और उनकी जो भाभी थी, जो आधार सिंह की पत्नी थी, उनके बड़े भाई की पत्नी, तो उनको बड़ा दुख होता था कि यह मतलब हमारे बड़े भाई अपनी पत्नी को एक नौकरानी से अधिक कुछ नहीं समझते और वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे इसको। और उसके बाद तो एक बार अपनी बड़ी बहन की ससुराल जाने का मौका मिला मोहन के, तो वहां उन्होंने देखा कि बहन सुबह 4 बजे से उठ जाती है, तो पहले चक्की पीसती है और चक्की पीसने के बाद जो आटा होता है उससे खाना बनाती है, और फिर जो उनके नौकर चाकर थे जो कि खेत पर जाते थे उनके लिए खाना बांधती थी, फिर उनके पति वगैरह और परिवार के लोगों को खाना खिलाती थी और जो बचा हुआ खाना 2 बजे खुद खाती थी। और वहां कुछ प्रथा थी कि जो उसके पति को हरिसिंह गौर से मिलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि साले और जीजा आपस में एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, पर्दा होता था उनके बीच में, तो ये भी बड़ा उनको अजीब सा लगता था, क्योंकि वो विदेश जा चुके थे उनके बड़े भाई आधार सिंह, और आधार सिंह के साथ ये खाना खाते थे, रहते थे, तो अब कोई भी व्यक्ति इनको अपनी बेटी नहीं देना चाहता था, क्योंकि समुद्र पार यात्रा जो भी जाता था उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था, तो इसलिए उनको बड़ा दुख था। तो ये सब होने के बाद उन्होंने इस पर काफी विचार किया, उनको लगा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना बहुत आवश्यक है, और उन्होंने इसके कुछ कारण खोजे और फिर उन कारणों पर काम किया, तो अंततः इनके 4 एक्ट उन्होंने पास करवाए लेजिस्लेटिव असेंबली में। पहला सिविल मैरिज एक्ट 1923 ईस्वी में अंतर जाति विवाह को मान्यता प्राप्त हो गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया वो एज ऑफ कंसेंट बिल 1929 पास कराया, इसमें अब कोई भी 14 वर्ष से छोटी बालिका का विवाह नहीं हो सकता था, महिला बालिका को विवाह के लिए कम से कम आयु 14 वर्ष होना निश्चित की गई। तीसरा देवदासी प्रथा का अंत कराया, धारा 372 और धारा 373 के तहत देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। चौथा जो उनका महत्वपूर्ण एक्ट था वो था एक्ट 29 सन 1923, इसमें अब उनसे पहले महिलाओं को कोर्ट में वकालत करने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा हर महिला को पुरुष के समान कोर्ट में वकालत करने का अधिकार मिल गया। तो आप समझ सकती है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया, अंतरजातीय विवाह की आपने बात की, वास्तव में एक बड़ा काम था, बड़ा कदम था ये, और 14 वर्ष से छोटी उम्र की लड़की का विवाह नहीं होना चाहिए ये कानून, फिर आपने बताया कि देवदासी प्रथा का अंत वास्तव में एक बहुत बुरी प्रथा थी, और फिर कोर्ट में वकालत का अधिकार, तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए। अच्छा ब्रजेश जी, हम अक्सर सुनते हैं कि डॉक्टर हरि सिंह गौर के सामने महादानी उपाधि प्रेम के साथ लगाई जाती है, और हम जानते ही हैं कि सागर विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी, जहां आप स्वयं पदस्थ हैं, उन्होंने स्वयं की थी और अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान में देकर की थी, तो ये एक बहुत प्रेरक प्रसंग भी है और बहुत रोचक प्रसंग भी है, इस विषय में हम विस्तार से जानना चाहते हैं।
नीता जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई स्कूल करने के लिए इनको जबलपुर जाना पड़ा था, और संभवतः इस समय उन्होंने यह सोच लिया होगा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सागर से लोगों को बाहर न जाना पड़े। और आप देखिए कि यहाँ पर हम जिस तरह की बात करती है कि आकर्षण का सिद्धांत तो अवचेतन मन की शक्ति, ये दोनों के दोनों अपने काम करना शुरू कर दिए, और आप देखिए परिस्थिति उनके अनुकूल बनती है, और फिर उनकी जो योग्यता थी, उनका जो वकालत का पेशा था, और फिर नागपुर में भी वो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और उस समय नागपुर में काफी बेहतर कार्य किए। 1922 में सरकार ने जब दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना की तो उसमें उनको पहला उपकुलपति बनाया, इस तरह से विश्वविद्यालय के संस्थापक जो वाइस चांसलर थे वो डॉक्टर हरि सिंह गौर बने, और उनके कदम इतने अच्छे रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए कि 1924 में उनको दूसरी बार वाइस चांसलर पर बनाया गया। और उसके बाद जो काम को देखते हुए उनकी योग्यता को देखते हुए 9 जनवरी 1925 को उनको नाइट हुड की उपाधि दी गई। तो इस प्रकार डॉक्टर हरि सिंह गौर अब डॉक्टर सर हरि सिंह गौर बन गए। और यही नहीं, तीसरी बार फिर से उनको दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। और वहां से जब सेवा उनकी समाप्त हुई तो 1928 से 1936 तक वो नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। इसके बाद इंग्लैंड में 27 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर का एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर हरि सिंह गौर को करने को दी गई। किस प्रकार आप सोचते हैं कि प्रकृति किस प्रकार उनका सहयोग कर रही थी। और जब इंग्लैंड पहुंचते हैं, कैम्ब्रिज में वो पढ़ चुके थे ऑक्सफोर्ड के साथ, जब इंटर यूनिवर्सिटी मैच होते तो उसमें डिबेट में फर्स्ट आए थे, तो काफी उनके प्रयास थे। तो वह चाहते थे कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्तर का विश्वविद्यालय भारत में भी हो और मैं सागर में बनाऊ। तो आप देखिए अब परिस्थितियां सब ऐसी बन गई कि उन्होंने जब लौट के आए तो डिसाइड कर लिया कि अब मुझे सागर में विश्वविद्यालय स्थापित करना है। तो दिसंबर 1945 में यहाँ पर बी एल सराफ थे, उनके साथ जब बैठे हुए थे चाय पर, तो उसी समय उन्होंने अपना विचार प्रकट किया कि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय हम बनाएंगे। विश्वविद्यालय बनेगा तो सागर में बनेगा और मैं पूरी अपनी संपत्ति को ही विश्वविद्यालय की स्थापना में लगा देता हूँ। तो 2 करोड़ की संपत्ति उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए दे दी।
अच्छा,
तो इस प्रकार उन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई 1946 को कर दी। इस प्रकार उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की।
वास्तव में बहुत ही रोचक भी प्रसंग है और बहुत प्रेरक प्रसंग है कि 46 के समय, 1946 का समय आप बता रहे हैं, उस समय 2 करोड़ रुपए की राशि अपनी सारी संपत्ति दान करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरह से एक ऐतिहासिक कार्य हुआ और डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब चलते चलते ब्रजेश जी, हम आपसे यही चाहेंगे कि आप बताएं कि डॉक्टर हरि सिंह गौर का जो जीवन है उससे क्या शिक्षा ली जा सकती है।
यदि शिक्षा की बात करें तो एक तो वो फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और दूसरी उनको छुट्टी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कहते थे वर्क कल्चर होना चाहिए। और फिजूल खर्ची में आपको बता दें, उनका जो कुलपति बनने के बाद जो खानसामा था उसको जो माचिस की तेलियां थी उनको स्टोव जलाना पड़ता था, तो उससे कहते थे इस माचिस की तेली को ब्लेड से आधे पार्ट में काटिए और आधे माचिस से सुबह के समय का चूल्हा जलेगा और दूसरी से शाम का, और 7 दिन बाद गिनते थे कि कहीं 14 से ज्यादा खर्च पड़ती है। और वो 7 o'clock का ब्लेड यूज करते थे, ये मिलता है, और उस ब्लेड पर 1, 2, 3, 4, 5 एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 4, 5, 6, 7, 8 डाल देते थे और उससे 8 बार अपना सेविंग करते थे 8 दिन तक। और जब इन्होंने गौर भवन बना, मॉडल हाउस बना, तो उसमें पंडित जी को बुलाया गया तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि दक्षिणा आपको कैश नहीं दी जाएगी, आपको चेक दिया जाएगा। तो 11 रुपए का चेक दिया था और उनको पहले कह दिया था मैं बिल्कुल एक अक्षत का दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए हवन करते में। हालांकि पंडित बहुत क्रोधी थे, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा महादानी व्यक्ति है, जो कह रहे हैं वैसा ही होगा, तो उन्होंने उस समय इतनी अच्छी तरह से पूजा पाठ की कि हवन के समय एक दाना भी व्यस्त नहीं हुआ। आप देखिए कि प्रकृति का चमत्कार देखिए कि उन्होंने कहा था मेरी मृत्यु पर भी छुट्टी नहीं होगी, लेकिन उनके मृत्यु के दिन प्रकृति ने कितना अच्छा चुना, 25 दिसंबर 1949, क्योंकि उसके बाद 7 दिन की छुट्टी हुई। 25 दिसंबर छुट्टी वैसे भी होती है जो सरकारी
जी,
उनकी बात भी रह गई और 7 दिन का अवकाश भी हुआ। और उन्होंने विदेशों में भी यात्रा की थी, उन्होंने कहा था कि हमें चरित्र निर्माण का विशेष बल देना चाहिए। वो जब जापान में गए थे तो उन्होंने देखा था कि दुकानों पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता और आदमी जो भी चीज खरीदता है उतना पेमेंट कर देता है। तो इस प्रकार उनके जो जीवन है वो तो शिक्षाओं का भंडार है। उनके जीवन से हमको इतनी शिक्षाएं मिलती है कि माता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पढ़ाई कैसी करना चाहिए। तो उनका जो जीवन है पूरा का पूरा आप ये मान के चलिए, और राधा कृष्ण ने बिल्कुल सही कहा कि उनके आचार विचार को यदि हम अपना लें रोजमर्रा के जीवन में तो निश्चित रूप से भारत एक बेहतर देश बनने की स्थिति में आ जाएगा।
बहुत ही सुंदर आपने आज की चर्चा की है ब्रजेश जी। डॉक्टर हरि सिंह गौर एक प्रेरक व्यक्तित्व, इस विषय पर हमने बातचीत की और बहुत विस्तार से उनके जीवन के विषय में आपने बताया और इतने जीवन मूल्य हैं उनके व्यक्तित्व में कि हम सीखते रह जाएं तो एक उम्र निकल जाएगी, लेकिन उन्होंने उन सबको जिया और लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। और जो उन्होंने संपूर्ण संपत्ति दान करके विश्वविद्यालय की जो स्थापना की, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत काम की बात थी और कितनी पीढ़ियाँ उस विश्वविद्यालय से तैयार हुई हैं। तो बस चलते चलते यही कहेंगे हम कि जिंदगी वही है जो काम आए किसी के, वरना तो इसे जैसे गुजारोगे गुजर जाएगी। बहुत सुंदर चर्चा के लिए साधुवाद आपको, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
सीप के मोती, सर्वांगीण विकास और चरित्र निर्माण पर केंद्रित इस कार्यक्रम का आज का अंक आपने सुना। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर आपसे होगी मुलाकात। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।